ऐसे तटस्थ सब वहां पर भी करते हैं जो कि द्वारका इत्यादि में और सब वैकुंठ में उनकी नित्य सेवा करते हैं, और कुछ जी वैकुंठ में उनकी सेवा करते हैं, और कुछ जी महा संकर्षण के अंश कर्णाधिशायी यही तटस्थ शक्ति में रहते हैं, यही से इनका प्रकाश जो इस जगत में बद्ध है, और कुछ जी वहीं से नित्य मुक्त होकर इस तरह से जीवों के कल्याण के लिए उपनिषद विद्या को सीखने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए ये उपनयन आज कुछ स्मृति आई आज का उपनयन देखकर मुझे स्मरण आया गोपाल चंपू इत्यादि आज ही के दिन में कृष्ण का उपनयन, आज ही के दिन माने उनका भी उपनयन था कृष्ण और बलदेव। कृष्ण और बलदेव अथुर के द्वारा ब्रज से मथुरा में इसी मथुरापुरी में लाए, उस समय तक उनका उपनयन नहीं हुआ था कृष्ण और बलदेव, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 10 वर्ष के करीब होगी,
11 वर्ष से 8 महीने,
इसलिए अभी उनकी उम्र नहीं हुई थी, तो जाता हो गया ना
वैश्य,
वहां पर वैश्य है, वैश्यों को 16 वर्ष से होगा, 16 वर्ष से पहले उपनयन नहीं होता, 16 वर्ष के बाद में होता है, तभी उनकी उम्र है, अभी नहीं हुई। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कृष्ण से गोपियों की शादी हुई और कृष्ण उनके पति हैं, ये ठीक नहीं जान, जब उपनयन नहीं हुई तो फिर शादी कैसे हो गई, उपनयन के बाद तो शादी होती है, उपनयन से पहले शादी कभी नहीं, कभी कभी उपनयन बहुत पहले हो जाता है, इसके बाद में उम्र होने के बाद में उसकी शादी, और कभी कभी जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वो लोग विवाह के एक दिन पहले या 2 दिन पहले उनका उपनयन करा करके और शादी कर देते हैं, एक ही खर्चा में दोनों हो जाता है, और नहीं तो उपनयन करने में 1 लाख रुपया खर्च करो, विवाह में फिर 1 लाख रुपया खर्चा करो, ये गृहस्थ के लिए जरा मुश्किल हो जाता है, तो धनी मानी है वो लोग ऐसा कर लेते हैं, किंतु साधारण रूप में जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन लोगों के लिए यही व्यवस्था कि विवाह से पहले ही दिन बच्चे को गात्र में हल हल्दी इत्यादि देकर और भी ब्राह्मण लोग आकर के उसका उपनयन करते हैं, इसके बाद दूसरे दिन शादी उसकी होती है। तो कृष्ण ब्रज से आए, अक्रूर ले आए, कंस खेल दिखाने के बहाने मनोरंजन के बहाने कृष्ण को बुलाया, किंतु उनको मारने के लिए उनको ब्रज में कहीं भी नहीं मार सका, नहीं मार सका, बहुत चेष्टा की, बहुत असुर भेज, किंतु लौट करके कोई नहीं आया, इसने सोचा कि घर के अंदर नहीं उनको मारा जाए, यहाँ पर हम सभी लोग रहेंगे, मैं भी रहूंगा, हमारे परिकर रहेंगे, हमारी सेनाएं रहेंगी, बड़े बड़े सेनापति रहेंगे, योद्धा रहेंगे, सब लोग मिल करके एक जगह से मारा नहीं दोनों भाई, इसलिए वहां पर हम लोग मंच बनाया, इसमें हम लोग बैठे हैं, यही रंग मंच है, बहुत बेसी ताकत इसमें लाखों लोग बैठ सकते थे, जहां ऊपर जो टीला सा दिखता है वो कंस महाराज जी के बैठने के लिए सबसे ऊंचा बनाया गया, और उनके परिकर लोग और वसुदेव देव की नंद बाबा को भी उसके नीचे वहां पर बैठा था, बड़े बड़े सेनापति और सब लोगों को बुलाया, ब्राह्मण लोगों को भी बुलाया, पूर्ववासियों को भी बुलाया, सब लोगों को देखते देखते कंस कृष्ण को हम लोग मारेंगे, बोलते किंतु हो गया उल्टा, कंस कृष्ण ने वो कौन हाथी कुबल्या पीठ हाथी को मारा, धनुष को तोड़ दिया, और रंगभूमि में पहुंचकर चारों मुष्टिक कौशल मूसल इत्यादि लोगों को मार करके उनकी गति दी, और उसके बाद में कंस ऊपर जा बैठा था, कंस ने ऑर्डर दिया कि वसुदेव को फिर से कैद कर लो और नंद बाबा को यहाँ से तिरस्कार करके यहाँ से अपमानित करके निकाल दो, और इनको भी अपमानित करो, अपमानित करके यहाँ से निकालो, ऐसा आदेश दिया, यही आदेश दिया, सिंह की बच्चे की तरफ में वहां से उछले और उसका सम्मान उपस्थित हुए, और उसके केस को पकड़ करके तुमने इसी बल पर हमारी मैया का केस पकड़ा था, बस केस जट उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। और उसके ऊपर में ऐसे एक मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर में तुम्हें कि वहीं पर मर गया, न अस्त्र न शस्त्र न कुछ भी कोई जरूरत नहीं।
राम नाम
इसके बाद में मर गया कि नहीं मर गया ऐसा देखने के लिए कृष्ण ने क्या उसका पैर पकड़ कर देखा, तो देखा जी सचमुच में मर गया, बिल्कुल देखा जा रही इतनी एक सेकंड के अंदर में ये मर गया। अब तो उनकी स्त्रियां दौड़ करके आई कंस की, और उसके भाई लोग आए, भाई लोग पहले कृष्ण और बलदेव को मारना चाहा, किंतु कृष्ण और बलदेव जी ने हाथी के दांत से ही उखाड़ कर सब पीट करके उनको मार डाला। बाकी जो बचे वो इधर भगे, कोई उधर भगा, कोई उधर भगा। अब कृष्ण की जय जयकार होने लगे, जो जादव भी छिप करते वो प्रकट होकर के इनकी जय जयकार करने लगे। कृष्ण ने उसका अंतिम संस्कार कराया विश्राम घाट के पास में ध्रुव घाट पर, और वहाँ ध्रुव घाट के बाद में विश्राम घाट में आकर के स्नान किए, और वहीं पर ऊपर में ठंड पड़ती है इसलिए स्नान करने से ठंड मथुरा में वो भी स्थान, आज उसी मथुरा प्रदेश में ही मथुरा में खास जमुना के निकट में इन बच्चों का उपनयन संस्कार किया। कृष्ण की क्रीड़ा हुई। इसके बाद में वो गए नंद बाबा अपने वसुदेव और देवकी का बंधन छुड़ाया, वो लोग तो इन्हीं के चरणों की वंदना करने लगे, फिर योग माया से उनकी बुद्धि को आच्छादित करके फिर उसने अपना पैदा कर लिया। इसके बाद में कृष्ण की कृष्ण का राज्याभिषेक होने के लिए बस जितने वहां पर लोग थे वो प्रसन्न थी, सभापति अध्यक्षता में सब लोग आए, सब समान आ गया। कृष्ण ने जोर पूर्वक उन्हीं अभिषेक के पदार्थों से पुनः उग्रसेन को राज्य अभिषेक किया, मुझे राज्य की जरूरत है, मैं आपका सेवक करते रहूंगा और आप जैसा आदेश देंगे पृथ्वी के लोग आपको मानने के लिए बात। यहाँ तक हो गया, और होने के बाद ही में बस नंद बाबा अभी तक बैठे थे अंबिका कानन के पास में कहीं जमुना के किनारे, जो कृष्ण ये होने के बाद में परसों तो जाना है, तो कल भी चला गया परसों भी चला गया, राज्याभिषेक में सभी लोग डूबे हुए हैं और ये वहाँ पर अकेले बैठे, इनको कोई बुलाए नहीं कुछ नहीं, आदर न सत्कार न भूल ही गए, जानबूझ करके भूल गए। शाम को कृष्ण बलदेव आए, उनसे बात हुई, बड़े दुख से वो मिला, विदा होने के बाद में बड़े दुखी होकर के लौट गए। अब जदवंशियों की सभा बैठी, अब अगला हम लोगों का प्रोग्राम किया क्या होता है, वसुदेव देवकी उग्रसेन और अक्रूर और बड़े बड़े सेनापति और वहां के बड़े बड़े बुद्धिमान ये सब लोग एकत्रित होकर के आज सभा बैठे। अब क्या किया जाए, वसुदेव जी बोले कि मेरे समझ से यदि कुछ कृष्ण को स्मरण ब्रज का होगा तो जल्दी वो ब्रज में चला जाएगा, अब फिर लौटेगा नहीं, इसलिए ऐसा कोई उपाय किया गया जिसे कृष्ण ये समझे कि मैं जादव हूँ
क्षत्रिय
और मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, देवकी के गर्भ से जन्मा और मैं जदुवंशी क्षत्रिय हूँ, ये कृष्ण में किसी प्रकार से संस्कार लाना जरूरी, मेरे समय से जल्दी से ही उसका उपनयन इत्यादि करके विवाह इत्यादि भी कर दिया जाए यहाँ पर, तब फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव किया कि इसको कल परसों में दिन दे करके और गर्गाचार्य को बुलाकर इसका क्षत्रिय जादव के रूप में इसका पहले तो उपनयन संस्कार करा दे, ये क्षत्रिय बालक है ये दोनों, नहीं तो ये भूलेगा नहीं, फिर बढ़ते लौट जाएगा। हुआ जैसे किसको किसको निमंत्रण देना चाहिए, पहले तो मथुरावासी सब लोगों को निमंत्रण दिया और ज्यादा लोग यहाँ पर हैं और हमारे इष्ट मित्र यहाँ तक हैं, सब लोगों को बुलाया, किंतु किसी ने प्रस्ताव किया उद्धव जी ने ब्रजवासियों को भी बुलाना उचित है क्योंकि आपके मित्र हैं। बसदेव जी ने बोले, बसदेव जी और अप्रू और दूसरे जो थे, तुझे ये उचित नहीं, यदि नंद बाबा आएंगे, यशोदा मैया आएंगी और ब्रजवासी कोई सखा बंधु बांधव उपनंद इत्यादि कोई भी आएंगे तो कृष्ण को स्मरण हो जाएगा ब्रज का और उसी समय में वो निकल करके चला जाए और ये सब करा धरा है सब कुछ रह जाए, ये संस्कार नहीं होगा। इसलिए ऐसा किया जाए, सबको बुलाया जाए, बड़े समारोह के साथ में ये हो उपनय, किंतु इसमें पासी में नंद बाबा हैं, कितनी दूरी पर, बस दो अंगुल की दूरी है, इधर में ब्रज इधर में मथुरा या नंदगांव भी समझो, तो नंदगांव से उनको बुलाना कितनी दूर थी बात, उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया, न उनको किसी प्रकार का कोई भी इसका कुछ भी नहीं दिया गया, ये कल लगता हुए हैं और बाकी सब जहां थे लोग सब लोगों को बुलाया गया। अब उस दिन कृष्ण का मुंडन हुआ जैसे ब्रह्मचारी का मुंडन हुआ, आजकल मुंडन नहीं कराते हो, यहाँ तक कि हरिनाम दीक्षा में भी नहीं कर, कहते गुरु जी मुंडन नहीं कराए तो नहीं चलेगा, तो खूब चलेगा, जैसे गुरु तैसे थे, तो उनका मुंडन भी नहीं होता, देखेंगे जैसे ही हाथ से निकल जाएगा मुंडन का कराया और दूसरी जगह में ये जाएगा तो वो कहेंगे अच्छा बनेगा, तो उनका मुंडन करने की जरूरत नहीं होती। आजकल पिता की श्राद्ध में भी मुंडन नहीं कराते, विवाह में भी पहले मुंडन होता था, आजकल विवाह में भी नहीं, हम तो देखते हैं क्या है थोड़ी पचड़ करके युद्ध करते हैं,
नौ है मुंडन पहले विवाह मुंडन होता था,
विवाह तो पहले मुंडन होता था, उपनयन होता था ना, मुंडन होता था, शुभ क्रिया जितनी थी सब मुंडन, पिताजी के साथ में, क्यों ये केश जो है और नख है इनको पवित्र माना, इसलिए इन सब चीजों को दूर करके शुभ कार्य में लोग बैठते हैं, इसलिए विवाह में भी मुंडन करके और पगड़ी सजा करके कुंडल पहनते थे, नाक में
नोलक
नोलक पहनते थे, हाथों में कंगन पहनते थे, और जैसे राजस्थान में अभी भी महिलाएं पहनती हैं वह तो वैसे ही उसका क्या लहंगा लंगा पहनाया जाता, बड़े फाट फाट से पापी में चढ़ करके जाते थे और विवाह इत्यादि होता, रस्म बड़े संस्कार से होता था, वो संस्कार सब धीरे 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 अब दीक्षा के समय में भी लोग रखते हैं। कृष्ण का मुंडन कराया गया, पीले कपड़े धारण कराए, एक श्याम एक गौ, अरे पिता सुन, श्याम और गौ की जो मुंडन करके जब पीत वस्त्र इत्यादि जब दिया गया, कानों में कुंडल और यहाँ पर नोलक रहा है, कान में कुंडल के वो लोहे की सोने की बल्लियां, मकराकृत कुंडल या सोने की बल्ली थी, इसलिए बचपन में हम लोग कभी ये कान में अभी तक छिद्र है, नाक में भी छिद्र है, उसमें नथुनी पहनाई जाती थी, पहले तो तांबे की इसके बाद में सोने की, ये वेद व्यवस्था है, 12-14 वर्ष तक तो ये सब बच्चों को ये विवाह तक लगा रहता था, विवाह के समय में ये सब कृष्ण को समस्त श्रृंगारों से आभूषणों से एकदम को सजा सकते, श्याम का ऐसा रंग उसको खूब फप गया, बहुत ही सुंदर, इधर बलदेव जी को भी उनके लिए सुंदर खड़ा उन पर और पटिया पढ़ने के लिए और हाथ में खदीर का डंडा और इधर में मुंज की मेखला और अजिम माने रूप मृग का मृगशाला, यहाँ पर उनको ऐसे दे दिया। और जो सब विधियां हैं उसी प्रकार से उनको सब किया गया। विधिवत गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ में बैठ करके वृद्ध श्राद्ध इत्यादि करके, जैसे हम लोग वृद्ध श्राद्ध माने गुरु परंपरा की पूजा, विधिवत जैसे आज किया गया, पहले शालग्राम या ठाकुर जी की पूजा, इसके बाद में गुरु परंपरा की पूजा, इसके बाद में स्वस्ति वाचक मंगल वाचक कीर्तन सब इत्यादि, और इसके बाद में साथ पिता जी ये करते हैं, और पिता यदि नहीं कर सकते तो कुछ में कोई ब्राह्मण जो चूंकि इसको जानता है वो इस चीज को कराए, वैदिक ब्राह्मण होना चाहिए। इसलिए यदि वो पिता नहीं कर सकता तो उस ब्राह्मण का वो वर्ण करता है, वर्ण किया था प्राय संकल्प के बाद में वर्ण करते हैं, हमारी तरफ से आप इसको उपनयन करता है, तो वो उनका उपनयन पिता के पक्ष में होता। वहां पर वसुदेव देवकी बैठे और सब लोग बैठे और उपनयन का कार्य आरंभ हुआ। गायत्री दी गई, गायत्री देने के बाद में विधिवत जैसा यहाँ पर हुआ, इससे भी वहां पर तो गर्गाचार्य का कर्म बहुत और विधि साक्षात विधि के साथ में सब काम होने के बाद में पूर्ण होम इत्यादि सब हुए, और बच्चों को भवतीं भिक्षां देहि किम् सुंदर उनको कपड़े पहना दिए गए और खड़ाऊ ले लिए, खड़ाऊ पर मस्तक मुंडी, इतना सुंदर वो बन गए जगत को मुक्त करने वाले। और भिक्षा जाएंगे गुरु जी ने कहा झोली दे दी, पीताम्बर की झोली बना दी, और कृष्ण को कहा, बलदेव जी को कहा, और माताओं से पहले भिक्षा मांगना, पहले अपनी माता से मैया से, इसके बाद में और भी माताओं से भिक्षा लेना, और इसके बाद में पिताजी और कृष्ण लोगों से भिक्षा लेकर के। जब कृष्ण को कहा गुरु जी ने, कृष्ण को एक बात याद आई, हमारी यशोदा मैया ने, मैया ने कहा था बेटा तुम्हारा उपनयन बड़े समारोह पूर्वक धूमधाम और समारोह के साथ में करेंगे हम लोग, और उस समय में तुम्हारी भिक्षा की झोली सोने की असरखियों से और अलंकारों से और सबसे से कैसे कर देंगे। बस मैया का स्मरण करने लगे, मैया की बात याद आई, भूल गए कि मैं मथुरा में हूं, मैया से भिक्षा मांगना है ना, बस आंखें उनकी बंद हो गई और देखा जब पहुंच गए कहां, ब्रज में पहुंच गए। मैया ने ऐसा कहा था, ऐसा स्मरण आया, इन मैया को देखा ही नहीं, बस ये देवकी को और पिता को भी एकदम उनका हृदय कराया। मैया को देखा बड़ी दुखी स्थिति में उनके विरह में, और मैया को खोजने लगे, मैया कहां बैठे, देखा जी मैया तो यहां है नहीं, बड़े दुखी होकर के बस कहा जी मैया, और वहां पर दिख पड़े बेहोश होकर के दिख पड़े। बलदेव जी भी बड़े दुखी हो गए और उनको उठाने के लिए वो भी रोते रोते बेहोश। अब जहां पर आनंद छा रहा था धूमधाम से ये सब व्यवस्था हो गई थी, कृष्ण को इस प्रकार से मूर्छित और रोते हुए देख करके सब लोगों ने हाहाकार मच गया, लोकाना खुशी करने के, देखो तो यहाँ पर उसकी मैया मौजूद है देवकी, और उसको देखा नहीं, और ये मैया यशोदा जी के लिए ये कर रहा, इसीलिए उनको बुलाया नहीं गया, यशोदा जी को और नंद बाबा बड़ी मुश्किल से उनको पानी के छींटे इत्यादि दिए गए, पंखे चले गए, फिर मूर्छा छूटी किंतु भावना नहीं गई, बस उनको लेकर के एकांत में बैठा। अब फिर सभा बैठी, यहाँ पर सभा बैठती है उसी को छोटा बैठान बड़ा बैठान इत्यादि कहते हैं, यहाँ पर नंद बाबा की सभाएं बैठती थी, विचार होता था। आज वसुदेव जी ने बैठक की, क्या किया जाए, फिर इसका आवेश तो जाता नहीं है, ब्रज का आवेश नहीं जाता, इसीलिए हमने संस्कार कराया कि उनका ये आवेश नहीं गया। तब हम लोग को क्या करना चाहिए, एक बात करनी चाहिए। इसी समय में इसको गुरु के यहाँ में विद्या पढ़ने के लिए जड़ता है, जरा दूर हो जिससे कि ब्रज की स्मृति ना रहे और विद्या में इसका मन लग जाएगा, भूल जाएगा जो मैं ब्रज का रहने वाला हूँ, जो सुधा मेरी मैया है, बाप नंदर सब भूल जाएगा। इधर कृष्ण और बलदेव जी ने इनको परामर्श दिया, देखो यह बात कहीं लीक आउट ना हो, कहीं लोगों को मालूम ना हो जाए, यदि ये जरासंध को मालूम हो गया या और लोगों को मालूम हो गया तो अभी आक्रमण कर देंगे और हमें परास्त करके, ये कृष्ण और बलदेव नहीं है, तुम्हें मार करके और चले जाएंगे, इस पर आक्रमण कर सकते। देखो मैं यदि बलदेव जी यदि मेरे साथ हैं तो हम दोनों मिल करके एक करोड़ हैं, और यदि बलदेव जी के साथ में मैं हूं तो हम 10 करोड़ हैं। इसलिए कोई चिंता, जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक कोई विश्व ब्रह्मांड, यहां तक कि देवताओं की सेना आ जाए, असुरों की सेना, वो लोग कभी परास्त नहीं हम लोगों को कर सकते। इसलिए तुम लोग ये मत कहना कि ये गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए बाहर में गए हैं 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 25 वर्ष के लिए, ये मत कहना। तुम लोग ये कहना कि यहीं पर कृष्ण का कल जो मूर्छित हो गए थे, कृष्ण बहुत क्लांत हो गए हैं और कंस के साथ में जो युद्ध करना पड़ा, इसलिए विश्राम की जरूरत, इसलिए एकांत में, यही मथुरा में ही एकांत में विश्राम कर रहे हैं, ये कहो। नहीं तो यदि ये पता लग गया कि बाहर में गया है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अभी जरा सुनदा करके आक्रमण करके परास्त करके सब चौपट कर देगा, मथुरा को मिट्टी में मिला। लोगों ने कहा ठीक है। अब कृष्ण बलदेव जी दोनों बैठे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा हम लोग को विद्या पढ़ने के लिए कहाँ चलना चाहिए, यदि किसी वैष्णव गुरु के पास में हम लोग गए तो हमारी भाव आकृति और विचारों को देखकर के वो समझ जाएंगे ये भगवान, उनसे हम लोग छिप नहीं सकते, तो जगत में प्रचार तप में प्रकट हो जाएगा ये भगवान, तो हम लोग की कार्य सिद्धि नहीं होगी, इसलिए हमें छिपा करके रखना है, इसलिए ऐसी जगह जाया जाए जो हमको वो जान ना सके और हमारी विद्या भी नर्वत, विद्या नहीं लेना है कृष्ण को और बलदेव को, जिनके मुख से सारी विद्याएं निकलती हैं वे, जिनके रोम रोम से समस्त विद्याएं निकलती हैं, उनको वेद पढ़ने की क्या जरूरत है, वेद तो उन्हीं से निकला है, नहीं ये परंपरा की धारा ठीक रहे, साधारण लोगों में भी ये प्रकार की परंपरा रहे जो गुरु के यहाँ से विद्या पढ़ती है, इसलिए उन्होंने ऐसा उस परंपरा की रक्षा के लिए, गुरु परंपरा के लिए। इसके बाद में ऐसा विचार करके दोनों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर चलना चाहिए अवंतिका, क्यों काशी का रहने वाला बड़ा भारी विद्वान शैव वो जा रहा था प्रभास तीर्थ करने के लिए, जा रहा था अवंता अवंति नगरी में, शंकर जी का बहुत विशाल मंदिर है क्षिप्रा नदी के तट पर, और वहीं पर कुंभ मेला आजकल लगता, पहले भी लगता था, तो वहां की मनोरम शोभा को देख करके वो ब्राह्मण माने कौन ये शांति प्रेमी बस वहीं पर रह गए, अपनी पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में वही उज्जैन में, अवंतिका माने उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, वहां पर महाकालेश्वर का शायद मंदिर, तो वहीं पर जाने का निश्चित कर लिया। इंद्रद्युम्न राजा पहले वही थे, आता है ना उसको वही इंद्रद्युम्न भी करा, बहुत धर्मात्मा धर्मात्मा की जगह, तो वहां पर पहुंचे, वहां पर मन के वेग से वो ब्रह्मचारी तो थे, अभी समावर्तन नहीं हुआ है गुरुपुरी से, जब तक विद्यापुरी न हो जाए कितनी वर्ष तक, 7 वर्ष 6 6 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष जब तक कि वो पूरा विद्या को अधिक न कर ले तब तक वो बुद्ध में ब्रह्मचारी को उसको जो अजीम और वो घंटा
मेखला
खदी का दंड या पलाश्ता ये सब उसके पास नहीं खड़ा इत्यादि सभी उस समय में वो रथ पर चढ़ना किसी जानवर के द्वारा या किसी आदमी के द्वारा ढोए जाने वाले वो नहीं चल सकता इसलिए कृष्ण ने देखा जैसे कैसे चला जाए मन के वेग से ही वो पैदल ही चल पड़े कितने नगरों और गांवों को पार करते हुए अवंतिका नगरी के पास रास्ते में जहां जहां गए उनका यह रूप देख करके सभी लोग मुक्त हो गए स्त्रियां कहती थी वो कौन सी माता इतनी सौभाग्यवती है जो ऐसे बच्चे को अपने
कोख में धारण किया
गोद में धारण किया गोद में खिलाया लालू पान और कौन सी स्त्री ऐसी सौभाग्यवती होगी जो इसकी स्त्री बनेगी पहले से ही कल्पना कर रही हो उनको यही कल्पना होती है बेटा हो जाएगा तब तो शादी के लिए मन चल लड़की हो जाए तो उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और यदि बेटा है तो उसका शादी होकर के नाती का भी मुख देखेंगे तो वो बहुत सुखी अतृप्त होता है यदि अपने नाती का मुख देख लिया और कोई तो अपना परनाती का भी मुख देख ले तो वो अपने को बड़े अहोभाग्य तो वहीं से कल्पना जल्पना लगी कुछ दिन वहां पर पहुंचे कृष्ण ने अपना परिचय दिया हम लोग जदवंशी हैं यादव हैं वसुदेव जी हमारे पिता का नाम हम आपके पास में विद्या अध्ययन के लिए आए आप महाविद्वान आदमी हैं समस्त विद्याएं वेद इत्यादि आपके मुख से निकलते हैं इसलिए आप बड़े कृपा पात्र हैं इसलिए आपके पास में आए हैं कि हम दोनों को शिष्य के रूप में ग्रहण करके हमें वेद की इत्यादि की शिक्षा उन्होंने कहा ठीक है दूंगा किंतु पहले वाले जो हैं हमारे पास में इतने छात्र हैं जिनको मैं संभाल नहीं पा रहा इसलिए कुछ दिन आप लोगों को प्रतीक्षा करने पड़ेगी तुम लोग तब तक तुम लोग का काम ये रहेगा कि गुरु गुरु हमें रह करके केवल भिक्षाटन करेगा भिक्षा जाएगा और घर का जो काम है ये सेवा इसलिए कृष्ण और बलदेव जी को भिक्षा का ये दिया गया था अभी पहले पढ़ने के लिए नहीं उसी समय में कृष्ण क्या करते उनके गुरुजी ने उनकी पत्नी से कहा था देखो इसको सेवा काम में और बच्चों की तरफ में मत लगाना ये बड़े सुकुमार बच्चे हैं और बड़े सुंदर हैं इनको झाड़ू देने में पानी मंगवाने में
बर्तन
मलने में ये सब काम में मत लगाना किंतु कृष्ण बलदेव क्या करते थे जहां सुयोग मिलता और गुरु जी नहीं देखते घर में चारों तरफ गुरु जी के लिए आसन बिछा देते बड़े दूर से कुएं से उस समय कुआं का कुआं एक बहुत दूर दूर में कुएं होते थे हमने भी देखा है ब्रज में भी देखा एक एक माइल दो दो माइल से
अभी भी है गांव
कलश के कलश ऊपर रख करके और बड़ी दूर से पानी ला रहे राजस्थान में अब तो बोरिंग और ये कुएं और क्या क्या ये सब चारों तरफ में तो वहां से कृष्ण पानी भर करके ले आते गुरु के लिए भिक्षा में जब जाने लगे तो इतना पहले इसका रूप देख करके कृष्ण का सभी विभोर हो जाते और महिलाएं इतनी उनको भिक्षा देती जो कि वो ढो करके नहीं ला सकते थे ढोते थे कौन उनके साथ में जो बच्चे थे पहले उनको मांगने से भिक्षा कम मिलती अब कृष्ण को जाते ही कृष्ण को देखते ही अपने आप इतना सम्मान मिलता कि ढोए ढोया नहीं जाता बच्चे भी बड़े खुश होते खाने पीने की सभी चीजें जितनी हैं उनको आसानी से मिल जाए गुरु जी के सामने गुरुआन के सामने सब रखते बड़ी प्रसन्न होते एक दिन गुरु जी की पत्नी ने पूछा अपने पति से अच्छा इसमें तुम्हारे यहाँ जितने छात्र पढ़ रहे हैं तुम्हारा सबसे प्रिय छात्र कौन ये बात उन्होंने कहा कि वो गौ श्यामल की जोड़ी है ना और उसमें भी जो श्याम रंग का है वो हमारा कहे क्यों वो तो कोई काम नहीं करते न झाड़ू लगाते हैं न कुछ करते हैं और तुम उनको कोई सेवा काम नहीं करने देता और वो सेवा नहीं करते फिर भी तुम्हारे क्यों प्रिय हैं तो मैं इस चीज को मैं नहीं कर सकता क्यों मैं समझता हूँ वो सबसे अधिक वही सेवा करते हैं। भिक्षा जाते हैं, पहले भिक्षा लाते थे थोड़ी सी जिसे चलता नहीं था, और आज उसको देखते ही सब भिक्षा बिना मांगे ही ऐसे ही लोग, और कहते हैं बेटा कल भी तुम हमारे यहाँ आना दर्शन देने के लिए पधारियो कल के लिए, पहले से उनको निमंत्रण। और जिस मोहल्ले में नहीं जाते वहां पर पूछते आज आया नहीं, आज आए नहीं वो बहुत शांति हुई, पहले से सब प्रस्तुत करते। इसके बाद में एक दिन, अभी पढ़ाई नहीं अभी आरंभ हुई, सुदामा से मित्रता हो गई। किस लिए सुदाम से? सुदाम नामक थे, इसलिए कि कृष्ण के सखा थे ब्रज में श्री राम। अर्जुन को किस लिए प्यारे हुए उनके? इसलिए अर्जुन कृष्ण के सखा थे, इसलिए उस नामों से जो जो थे कहीं भी मिला उनको बड़ा प्यार, उनसे मित्रता हो गई। इसलिए श्री राम जी से बलदेव जी से भी बढ़कर के प्रीति हो गई। क्यों? बलदेव जी में और इनमें मर्यादा का कुछ संबंध है, भैया का संबंध है, इसे बासल मिश्रित कुछ ऐश्वर्य जनित इनमें बात। और सिद्धांत के साथ में लंगोटिया यार, दोनों लंगोटिया यार, जैसे मैंने लंगोटिया यार में क्या
जब नंगे थे उस समय से
धरती नंगे टंगे सब निपटते खेलते हैं कूदते हैं सब, उनसे कोई दुराव दात बलदेव जी से कोई बात करने में कोई लज्जा भी हो सकती है, सिद्धांत से नहीं हो सकती। इस तरह से सिद्धांत से बड़ी मित्रता हो गई। एक दिन बड़ा भयंकर अंधकार हो गया दिन में ही, और असमय में ही वर्षा होने लगी, जाड़ों का दिन, पानी जब देखा संभव हुआ जैसे ये गिरेगा। गुरुवाई ने कहा, बच्चों को बुलाया, बेटों देखो घर में लकड़ी एक कमी, और मैंने ही समझती थी ये वर्षा होगी, जल्दी से कुछ सूखी लकड़ी इधर उधर से ले आओ और घर में रखने, तो ये वर्षा होने वाली है, कब वर्षा हो जाए कोई ठीक नहीं, जहां वर्षा हुई भीग जाएगी रसोई भी नहीं करेगी। और जो बच्चे थे देखे कि शाम हो गई है वर्षा होने वाली है, इधर देख रहे हैं इधर देख, मतलब क्या
जाने की इच्छा नहीं है,
देख रहे हैं विचार करें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, यदि वर्षा हो गई कुछ हो गई तो, इसलिए कुछ विचार इधर उधर देख रहे हैं, कभी आकाश में देखते हैं कभी गुरुवाइन की तरफ में देखते हैं, कभी कृष्ण और बलदेव भी उनमें थे, कृष्ण और सुदामा भी थे। इन्होंने कृष्ण ने किया कि आज उस बच्चे को साथ में लेकर के और दोनों एकदम निकल गए साथ ही एक मिनट की देर और जाकर के बनने पहुंचे और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया। अभी रात होने जा रही थी कि तो पहले से अंधकार, इसलिए 8-9 बजे तक इतना घोर अंधकार हो गया कि एक हाथ की दुबस को मिली ना, और इतनी मूसलाधार वर्षा होने लग गई या इतना भर गया पानी ये कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है ये पता नहीं। इसलिए कृष्ण बलदेव कृष्ण सुदामा जी गठरी को यहाँ पर लेकर के पेड़ की आड़ में वहां पर खड़े रह गए रात भर। गुरु जी उधर कह रहे हैं कि अच्छा ये बच्चे की लड़के बच्चे की कृष्ण और सुदामा कहाँ है? गुरुवाणी ने कहा जी वो तो शाम ही को निकले थे लकड़ी लाने के लिए भी लौटे, और गुरु जी उनके ऊपर बड़े ही नाराज, बस मरना ही बाकी रह गया और बाकी सब कुछ कर दिया। इसके बाद में सवेरे फोर में तड़के 3-4 बजे वहां से निकले और उसी बन में लाल तेल लेकर के, तब तक वर्षा कुछ थम गई, जाकर के कृष्ण और उनको पुकारा अजय गुरु जी हम लोग यहाँ है। गुरु जी एकदम वहां पर पहुंचे, गुरु जी के चरणों में उन्होंने सिर झुकाया, बड़े प्रसन्न हो गए, आंख से आंसू निकल लगे और बोले सारी वेद विद्याएं 64 कलाएं तुमको अभी बस एक दिन भी पढ़ना नहीं पड़ा, सब विद्याएं 64 दिन तक गुरु जी के घर में रहे, इसमें इसी में समय बिताया। पहले के जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे जो समावर्तन जिन लोगों ने करा, समावर्तन माने गुरुगृह से पढ़ करके वेदों को अध्ययन करके चले गए थे, और जो यहाँ पर थे जो सारी विद्याओं में वेद विद्याओं में कलाओं में निपुण थे वो, ये सब लोग कृष्ण के और बलदेव जी के इस भाव को देख करके बड़े स्तंभित, यहाँ तक कि गुरु जी ने भी वेद की विद्या में जहां उनको संदेह था उनका भी वो संदेह दूर कर दिया कृष्ण ने अपने उन व्याख्याओं से। गुरु जी ने ये पूछा कोई, जिस विषय में गुरु जी को भी संदेह, और उन्होंने इस प्रकार से व्याख्या के साथ में उसको बतलाया जो गुरु जी का भी संदेह, वो भी आश्चर्यचकित रह गए। अब होगा जैसे कल इसका समावर्तन होगा, समावर्तन मैंने
वापिस जाएगा,
अब ये सब विद्या पढ़ने, अभी तो पढ़ने की कोई जरूरत, गुरु और गुरुवाइन और सब लोग छात्र सब लोग विचार करें, इसके बिना रहेंगे हम लोग कैसे, अब ये समस्या है, इसके बिना तब हम लोग रह नहीं सकते, तभी समावर्तन होगा ही। उस दिन जब सब लोग आ गए, अब उत्सव होने वाला है, तो गुरुवाइन गुरु जी ने पूछा, कृष्ण ने पूछा, हम लोग कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, हम लोग क्या दक्षिणा दें। गुरु जी ने कहा मैं तो कुछ दक्षिणा के संबंध में नहीं जानता, अपनी गुरुवाइन से पूछ लो। गुरुवाइन जी वहीं पर खड़ी थी, उन्होंने कहा हमारा ज्येष्ठ पुत्र, जिसे मालूम होता है कि और पुत्र थे ये इसमें गोपाल चंद, हमारा ज्येष्ठ पुत्र वो जब यहाँ गया था समुद्र में स्नान करने के लिए, और वहीं पर फिर समुद्र में स्नान करके लौटा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दक्षिणा में उसी पुत्र को हमको लौटा दें। तो कृष्ण हंसने लगे और बोले ने, आपने जो हमको विद्याएं सिखलाई हैं 64 प्रकार की, उन विद्याओं के आधार पर ही उसमें बहुत सी ऐसी विद्या है जिसके द्वारा जो नहीं होना है उसको भी कर डालते हैं, इसलिए मैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने प्रभाव से भगवत्ता करें, आपने जो विद्या हमको पढ़ाया है उसी विद्या के द्वारा हम ही उस बच्चों को आपके बच्चे, ये कर करके गए समुद्र में, समुद्र हाथ जोड़ करके बोला आप क्या चाहते हैं आदेश करें। उन्होंने कहा जैसे वो हमारे गुरु जी का पुत्र ये पानी में डूब करके मर गया था, वो कहाँ है, पंचजन्य नामक एक ससुर ने निकलवा दिया। तो कृष्ण ने डुबकी लगाई और वहां पर गए उसको मारा। दो प्रकार की कथाएं कल लोग हरी कथा सुना, एक अनुसार उसके पेट में चले गए उसको देखा उसे मार करके, और उसे देखा कि कहीं नहीं है, यदि खा करके हजम कर लिया तभी कुछ रहेगा वो भी नहीं रहा, हड्डी तक नहीं, उसे मार दिया। और एक में है उसे मार करके पेट में गए तो वहां पर पेट में ही ये शंख था उसको ले आया, और दूसरे में है उसको मार करके वही शंख था उसी में से निकल करके वो लोग जाता था। तो यही कुछ युक्ति युक्त मालूम होता है कि उसके पेट में जब गए तो उसके पेट में एक शंख समेत एक कोल निकल गया था, शंख में जीव होते हैं ना उनको खा गया, तो वो मिला वो शंख को ले आकर के निकले। फिर वहां से बोले जैसे तुम बतलाओ जैसे समुद्र से जी कहाँ गया ये, वहां में कहा नहीं, उन्होंने कहा जमपुर में होगा। जमपुर में गए दोनों कृष्ण और बलदेव, और वहां पर जम से पूछा, जम आए उन्होंने कहा जैसे उसका तो शरीर बदल गया है जीवात्मा है, और आपके आने से आपके शरीर के सुगंध से यहाँ पर जितने जीव थे जो कि बैतल यहाँ पर नर्क भोग कर रहे थे, उस नर्क के जीव सब उद्धार पा करके चले गए, न जाने क्यों एक जीव वहां पर पड़ा, किंतु वो पहले जैसा नहीं, तो हो सकता है कि वही आपका गुरु पुत्र हो, कृष्ण ने जब उसे ले आओ, उसने ले आया तो उन्होंने कहा कि यही गुरु पुत्र है, ठीक वैसा ही अभी कल कहीं पर हमने पढ़ा था मुझे याद नहीं जो वही पद हो गए, तो ये कैसे संभव हुआ, ब्रजलीला के तो ब्रजलीला में मध मंगल थे और ये द्वारका की लीला है, द्वारका नहीं मथुरा की लीला है, तो ये कैसे संभव हुआ, तो पहले जुकी को कथा हो सकती है, इसलिए उस रूप में इसका
सामंजस्य।
तो इस तरह से अपने गुरु जी के यहाँ ले आकर के उस पुत्र को दिया, और इतने में चारों तरफ हल्ला हो गया जैसे ये गुरु जी की सेवा करने वाला उसके पुत्र को लेने वाला कौन है, ये साधारण नहीं, इतने वहाँ के जो राजा थे वो यहाँ आकर के देखे जैसे ये तो हमारा भगना है, हमारा वो है साले का लड़का, स्त्री की शादी बहन की शादी,
बुआ बुआ
बुआ जी बुआ जी ने आकर के इनको देख करके इनको पहचान लिया, गोदी में लेकर के रोने लगी। और तो वो बड़ा सम्मान किया, अपने घर में ले गए और इनका वहां पर नाम हो गया। चारों तरफ में गुरु जी तो बड़े कृतज्ञ हो कृतार्थ हो गए। इस प्रकार से वहां पर ये सब लीलाएं कर करके मनोरथ से भी अधिक तेज से यहाँ तक की उपनयन की कथा कृष्ण और बलदेव जी की। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। उपनयन संस्कार की जय। गौ